ओम शांति। इटली का एक व्यक्ति भगवान की बहुत आराधना करता था, रोज चर्च जाता था, शास्त्र पढ़ता था, प्रार्थनाएं करता था, परंतु जीवन ने कुछ ऐसी करवट बदली। धन का लोभ, सत्ता, संसार, संसार का आकर्षण, संबंधों में लगाव उस व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान से बहुत दूर ले गया और जो कि पहले बहुत गरीब था अब एक धनवान व्यक्ति बन गया। इतना धनवान कि जिसके पास सब कुछ था परंतु एक चीज से वो रिक्त हो चुका था, ईश्वरीय प्रेम जो उसके हृदय में कभी था। वर्णन है कि एक बार वो अपनी कार से कहीं जा रहा था और अचानक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना, और उस दुर्घटना में उसे थोड़ी बहुत खरोच लगती है, ज्यादा नहीं। वो कार में ही बैठा है, चोट लगी हुई है, दुर्घटना हुई है, एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर में आने वाली है। उस बीच कार का जो खाना होता है वो खुला हुआ हो जाता है और उसमें एक पुराना उसी का धर्म ग्रंथ बाइबल रखी होती है और अचानक उसकी नजर उस पर पड़ती है जिसे वो कभी रोज पढ़ता था, जिस पर वो कभी रोज मनन करता था, जिसकी प्रार्थनाएं वो रोज करता था। कभी अभी कई वर्षों से सब कुछ छूट चुका था और अचानक वो किताब उसे दिखती है और वो किताब उठाता है। उसके हाथ में वो किताब आती है और बीच से खोलता है और अचानक एक वाक्य वो पढ़ता है, वी ब्रॉट नथिंग इन टू दिस वर्ल्ड एंड वी कैरी नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं आए और हम कुछ भी लेकर नहीं जाते और यकायक उसका सारा जीवन उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है कि मैं क्या था, मैं कैसा था, कहां वो प्रभु प्रेम, कैसा वो पुरुषार्थ, कैसा वो ईश्वरीय जीवन, और अब मैं कहां खो गया, अब मैं कहां भटक गया, ये कैसा जीवन है। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है और मैंने क्या पाया और मैं क्या लेकर जाऊंगा। वी ब्रॉट नथिंग इन टू दिस वर्ल्ड एंड वी गो आउट विथ नथिंग, फिर बचा क्या। इस धन को कमाने में न मालूम कैसे सूक्ष्म पापों को मुझे करना पड़ा, कितनों को दुख देना पड़ा, और एक नई स्मृति, एक नव चेतना फिर से हृदय में जागृत होती है, एक गहरा अनुभव कि यदि मैं मर गया होता तो क्या होता। ये पहली घटना। एक दूसरी घटना फिर आज की जो क्लास है जिसका शीर्षक है जब प्राण तन से निकले। एक व्यक्ति ऐसा ही अंधेरी रात में भटक जाता है किसी जंगल में, घटाटोप अंधकार, चला जा रहा है, परंतु दिख कुछ भी नहीं रहा है। और अचानक उसका पैर फिसलता है और उसने सुना है इसी जंगल में कोई ऐसी एक खाई है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो आज तक वो बचा नहीं। और पैर फिसलता है और एकदम से चिल्लाता है कि बचाओ, परंतु उसी समय एक पेड़ की डाली उसके हाथ में आ जाती है और उस डाली को वो पकड़ लेता है। रात सर्द है, धड़कन बड़ी हुई है, मृत्यु सम्मुख है, अब गिरा तब गिरा। तेजी से पकड़ता है, पर कितना पकड़े, अगर थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी हाथ ढीला हो जाए तो मृत्यु। रात भर पकड़ के रहता है, कुछ पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं नीचे खाई कैसी होगी। जीवन दिखाई देने लगता है, क्या मैंने किया, क्या मैंने पाया। कप रहा होता है भयभीत, ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था, मृत्यु को इतनी समीपता से कभी नहीं देखा था। असंख्य लोगों की अंतिम स्थिति को, अंतिम यात्रा को देखा था, परंतु आज मृत्यु स्वयं सामने थी और वो रात भर पकड़ता है, पकड़े रहता है, तेज पकड़ के रहता है। और धीरे धीरे सूरज निकलता है, सूरज की नाचती किरण उसके चेहरे पर गिरती है और वो जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी उस जंगल में, उस खाई में गूंजने लगती है, क्योंकि वो देखता है केवल 7 इंच नीचे जमीन थी। सोचता है यदि ये मुझे पहले पता होता तो मेरी रात ऐसी ना गुजरती, केवल 7 इंच नीचे जमीन थी। मृत्यु का चिन्ह जिन लोगों ने अनुभव किया है या मृत्यु के मुख से जो बाहर आए हैं, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव उस एक पल में, उस एक क्षण में कर लिया। जीवन और मृत्यु दो छोर है, जन्म और मृत्यु उसके बीच में जीवन पल रहा है। जिसने जीवन को जाना उसने मृत्यु को भी जाना, जिसने जीवन को ही नहीं जाना वो मृत्यु को भी नहीं जान सकता। मृत्यु से व्यक्ति भयभीत है, ऐसा शायद इस संसार में कोई व्यक्ति है जिसे मृत्यु का भय नहीं। गहरे अचेतन में, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं एक अज्ञात सा भय है, बचाना चाहता है स्वयं को, या फिर दूसरों को मरते हुए देखकर कभी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी एक दिन नहीं हूंगा। आज जो ये कुछ है, आज जो ये कुछ खड़ा किया है, ये भवन, ये संबंध, ये नाम, ये ठाट, ये बाट, एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। अज्ञात सजीता है, भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। कहां भाग रहा है शायद उसे भी नहीं पता। जीवन में इतनी छोटी छोटी बातें हो रही है, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां भी हो रही है, पर ध्यान उस पर नहीं। चेकिंग तो करता है, एक ब्राह्मण आत्मा भी अपनी स्वयं की चेकिंग करती है, परंतु फिर भी बहुत सारा छूटते जाता है बीच में। तो आज हम देखेंगे कि जब प्राण तन से निकले, जब मृत्यु का वह संग्राम कहो महाघड़ी कहो सामने आ जाए तो हम क्या करें। मृत्यु की चर्चा बहुत कम होती है, जीने की कला इस विषय पर हम बहुत बोलते हैं, चर्चा करते हैं, परंतु मरे कैसे? मरो ही जोगी मरो, ये मरण है मीठा, कैसे मरने को मीठा बनाए उसकी चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति एक नाई के पास जाता है और कहता है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट मेरी दाढ़ी और मेरे बाल बना दो, राजधानी की स्वीट से। तो वो नाई उसके बाल बना देता है और उसकी दाढ़ी बना देता है और बीच बीच में बहुत सारे बाल छोड़ देता है। वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, ये कैसी बेहूदी दाढ़ी तुमने बनाई है? तो नाई कहता है, राजधानी छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, बड़े बड़े स्टेशन पर रुकती है। पुरुषार्थ में स्पीड राजधानी की हो, परंतु सेल्फ चेकिंग में स्पीड राजधानी की ना हो, क्योंकि बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, उसकी भी चेकिंग हमें करनी है। तो केवल 7 इंच की दूरी थी और नीचे जमीन थी, परंतु वो 7 इंच पूरी रात कपता रहा, डरता रहा, भयभीत होकर गुजार दी। जब हमारे सामने मृत्यु आ जाए, मृत्यु की वो घड़ी आ जाए, और कब आएगी पता नहीं, शायद यही रात अंतिम रात भी हो सकती है या नहीं, शायद कल का सवेरा हम ना देखें। यदि आज ही इसी रात या इसी पल मृत्यु द्वार पर दस्तक दे, तो किस मृत्युओं में हम शरीर छोड़ेंगे? अंतमति सो गति का गायन है, व्यक्ति वैसे ही शरीर छोड़ता है जो उसकी जीवन भर धारणा हुई हो, जो उसकी जीवन भर स्मृति हो, जो जीवन भर के उसके संकल्प हो। तो मृत्यु के उस घड़ी में कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, और क्या पुरुषार्थ हो, इसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमने बात की थी 7 इंच की दूरी की, तो हर एक ब्राह्मण आत्मा चाहता है कि मेरी मृत्यु बहुत सुखद हो। उस सुखद में 7 रूल ऑफ 7 की हम चर्चा करेंगे। रूल ऑफ 7, जिसमें 7 यस हो, 7 नो हो और 7 एफर्ट्स। 7 बातें होनी चाहिए, 7 चीजें मेरी मृत्यु के घड़ी में नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों ही चीजें होने के लिए 7 प्रकार के पुरुषार्थ। डेथ्स रूल ऑफ 7। सबसे पहले चर्चा करेंगे वो कौन सी बातें हैं जो हमारे मृत्यु के समय हो। मृत्यु हमेशा से ही एक रहस्यमयी घटना रही है। सदियों से विचारकों ने, सदियों से दार्शनिकों ने, धार्मिक लोगों ने, भक्तों ने, वैज्ञानिकों ने इस घटना के बारे में सोचा है, जानने का प्रयत्न किया है, मृत्यु में आखिर होता क्या है, क्या हो जाता है जो अब तक व्यक्ति जीवित था, अब तक बोल रहा था, अब नहीं बोल रहा, शरीर तो वही है, होठ तो वही है, आंखें तो अभी भी है, परंतु देख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, कोई हलचल नहीं है। व्हाट इज दिस? क्या रहस्य है? असंख्य थैनेटोलॉजी, बहुत सारी फिलोसॉफीज मृत्यु के इर्द गिर्द संसार में है, सभी मृत्यु को स्टडी करती है। चाहे जो मृत्यु को स्टडी करे या ना करे, मृत्यु को जाने या ना जाने, मृत्यु सबको आनी है। और डेथ अल्टीमेट ट्रुथ है जीवन का, संसार ने ऐसा कहा है। ऐसा कोई नहीं जो इस संसार में आया जो सदैव रहेगा। भीष्म की चर्चा है इच्छा मृत्यु के वरदान की, परंतु शास्त्रों की बातें हैं। संसार में दो प्रकार के धर्म हैं, एक वो धर्म है जो पुनर्जन्म को मानते हैं, एक दूसरे धर्म है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। पुनर्जन्म को जो नहीं मानते वो तीन है, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। पुनर्जन्म को मानने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन। इस आधार पर उन्होंने बहुत, जिन्होंने पुनर्जन्म को नहीं माना उन्हें भी मृत्यु को तो स्वीकार करना ही पड़ा। वो कहते हैं जीवन एक ही है, बस इसी के आधार पर स्वर्ग और नरक निर्धारित होता है। हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने बचपन से अब तक कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया, जिनसे हमें बहुत प्यार था उन्होंने, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था उन्होंने। हमने मृत्यु को किसी ने बहुत समीपता से देखा है, किसी ने बहुत दूर से, किसी ने आंखों के सामने मरते हुए आत्माओं को देखा है निर्दयता से, किसी ने स्वजनों की मृत्यु को देखा है, आंखों के सामने अपने स्वजनों की हत्या देखी है। सिख रायट्स 84 लोग अनुभव सुनाते हैं क्या क्या हुआ था उस समय, क्या क्या बातें थी, कैसी कैसी वो घटनाएं थी, कितना दर्दनाक वो दृश्य था। हमें ज्ञात है, ज्ञान है आत्मा का, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर को छोड़ती है दूसरा शरीर धारण करती है, परंतु आत्मा की अमरता को जानने वाले भी आत्मा शरीर से न छूटे उसका उतना ही प्रयत्न करती है जितना वो लोग जो आत्मा को न जानते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान दूसरों को सिखाने वाले भी मृत्यु से शायद कभी कभी उतना ही भयभीत है जो आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ है। क्यों है ये डर, क्यों है ये भय, क्यों दुख होता है मृत्यु से, चिंतनीय विषय है। तो हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा ने हमें जीने की कला तो सिखाई है परंतु मृत्यु की कला भी सिखाई है। 18th जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, सात संदेश आए। सात संदेश आने के बाद बाबा से एक प्रश्न पूछा गया, आप अव्यक्तवाणी की किताब से पढ़ सकते हैं। प्रश्न पूछा गया बाबा से, बाबा बाहर का सीन तो हम सब जानते हैं परंतु आपके अंदर क्या सीन हो रहा था वो हमें बताइए। बाबा ने कहा अच्छा बताता हूं सुनो। जब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, बाबा ने कहा जब मैं शरीर छोड़ रहा था, रात का समय था, मेरे मन में एक सबसे पहला, दो अनुभव बताए बाबा ने। पहला अनुभव था एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था, मल्ल युद्ध चल रहा था और मैं साक्षी होकर देख रहा था। दो फोर्सेस, दो शक्तियां आपस में लड़ रही थी, एक योग बल, एक दूसरा कर्म भोग, और दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। परंतु मैं इन दोनों शक्तियों को ऐसे देख रहा था जैसे दो पहलवान एक अखाड़े में लड़ाई कर रहे हैं और मैं दोनों को साक्षी होकर देख रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद योग बल की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर कर्म भोग की शक्ति कम होने लगी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे सारे कर्म भोग एक सेकंड में चुप्त हुए हो गए और कर्म भोग की शक्ति निर्बल हो गई और कर्म योग की विजय हुई। यह मेरा पहला अनुभव। दूसरे अनुभव में तीन बातें मैंने अनुभव की। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, बाकी का बाहर का सीन तो सबको पता है, जिसकी सब जगह चर्चा होती है, कैसे बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दादी को दे दी। नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा, तीन प्रकार की दीक्षा का की चर्चा शास्त्रों में है। गुरु या कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व जिसके पास अनंत शक्तियां है वो नैनों से शक्तियां दे देता है, नैन दीक्षा स्पर्श से देता है या मंत्र से देता है, शक्तिपात। ये सीन तो सबने देखा, पर एक सीन अंदर चल रहा था जो बाबा ने खुद वर्णन किया। तीन बातें उसमें थी। सबसे पहली, मैं बाबा से बात कर रहा था कि बाबा मैं हम आपके पास आ रहे हैं, बाबा हम आपके पास आ रहे हैं। दूसरा, शरीर छोड़ते समय ब्रह्मा बाबा की अवस्था, सभी बच्चों के प्रति शुद्ध स्नेह था, शुद्ध मोह था। ये संकल्प नहीं था, मोह की रगे नहीं थी, ये संकल्प नहीं था कि मैं छुट्टी लेकर नहीं जा रहा, परंतु ये संकल्प था सभी बच्चों के प्रति स्नेह है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, बाबा ने कहा मैं अनुभव कर रहा था आत्मा शरीर के एक एक अंगों को छोड़ती जा रही है, आत्मा शरीर के एक एक अंगों को छोड़ती जा रही है। भा भा सन्नाटा हो रहा था, जैसे अब हो गया। अलर्ट होके बैठेंगे और अपने ही देह की मृत्यु का अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी सन्नाटा हो गया है। तो इस डेड साइलेंस में अपनी ही मृत्यु को देखना है, क्या अनुभव होता है। तो चले, रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा, मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में शक्तियां फैल रही है। चेतना की वह शक्तिशाली किरण मैं हूं, चेतना का वह दिव्य प्रकाश मैं हूं, मृत्यु को मैं देखती हूं। गया है। अर्थी सज रही है, मैं आत्मा देख रही हूं अपने शरीर को, सन्नाटा। मरघट का वह दृश्य, शमशान घाट, ऊपर से मैं आत्मा देख रही हूं, ये है मेरा शरीर। लकड़ियां रखी है, जल रहा है, आग की लपटें उठ रही है, हवाओं में, ये है मेरा शरीर। मैं आत्मा देख रही हूं स्वयं के शरीर को जलते हुए। और शरीर के साथ ही शरीर की इच्छाएं जल रही है, शरीर के भोग, शरीर की वस्तुएं, शरीर के धर्म, शरीर की भाषा से लगाओ, शरीर के स्थान से लगाओ, देह के संस्कार, कहां है वो सौंदर्य, कहां है वो देह का अभिमान, वो अहंकार, वो मेरा घमंड, कहां है वो सौंदर्य। लटकती आग की लपटें उठ रही है, मैं देख रही हूं साक्षी होकर। क्या यही वो देह है जिसकी इतनी अकड़ थी, सब कुछ गलत हो रहा है। स्वयं की आंखों से देखती हूं, क्यों ये लगाओ इस देह से, क्यों ये जीवेशना, क्या है इसमें जो मिटने वाला है, जिसकी तृष्णाएं कभी नहीं मिटती, वह नश्वर चल रहा है। मैं इससे अलग हूं, डिटैच। अनासक्त, एक ही संकल्प, अब घर जाना है। ओम शांति। देखा सबने, सबसे पहली बात सेवन यस में, मरने के लिए जो सात चीजें होनी चाहिए, होश। यदि मैं मरूं, यदि मेरी मृत्यु हो तो संपूर्ण होश में हो, जागरण की अवस्था में, बेहोशी में नहीं मरना है, होश में मरना है। और होश में केवल वही मर सकता है जो जीवन होश में जिया है, जागरण में, माइंडफुलनेस में, अवेयरनेस में मर रहा है। परंतु उसे खुद पता है मैं मर रहा हूं, उसे खुद पता है कि अभी आत्मा देह से वापस निकलने वाली है। इस प्रतीति को, इस अनुभूति को कहा जाता है होश में मरना। मनुष्यों की आदत है बेहोश होकर मरने की, पुरानी आदत है। होश में, एक सूफी संत था, मरने का समय जब नजदीक आया तो अपनी चप्पल लेकर भागने लगा। शिष्यों ने कहा, कहां भागते हो? उसने कहा, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मनुष्यों की एक बुरी आदत है मरने के बाद दूसरों के कंधों पर जाने की। इस आदत को मैं तोड़ना चाहता हूं। मैं किसी के कंधों पर नहीं जाऊंगा। जीवन स्वतंत्र जिया हूं, जीवन निराधार होकर जिया हूं, जीवन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। नो इमोशनल स्लेवरी, नो बॉन्डेज, नो चेन्स, नो केज। कोई पिंजरा नहीं, कोई जंजीरें नहीं। मरते समय भी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। वो जाता है, फावड़ा लेता है और भागता है मरघट पर, और एक गड्ढा खोदता है, फावड़ा बाहर, अंदर लेट जाता है और मर जाता है। मेरी कब्र भी दूसरा ना खोदे, मैं खुद ही खोदूंगा। और संपूर्ण होश में पता है कि मैं शरीर से निकल रहा हूं। तो ऐसे होश के लिए लंबा समय होश में जीना पड़ेगा। जैन धर्म इसको कहता है माइंडफुलनेस। हर चीज होश में करना। चल रहे हो, पता हो मैं चल रहा हूं। खा रहे हो, मैं खा रहा हूं। सुन रहे हो, मैं सो रहा हूं। व्यक्ति यहां रहता है, मन कहीं और भटकता है। क्लास में अभी यहां बैठे हैं, परंतु तैयारी कल की चालू है। ट्रेन कितने बजे है? सामान क्या क्या लेना है, किस किस से मिलना है। होश में नहीं है, है यहां पर जी रहा है भविष्य में, है यहां जी रहा है अतीत में। होश में जीना अर्थात वर्तमान में जीना। नाउ इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। तो पहली चीज जो हमारे मृत्यु के समय हो वो है होश। दूसरी खुशी, हमारी मृत्यु खुशी का अवसर हो, सेलिब्रेशन हो, मातम का अवसर नहीं। दुखी होकर नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। आसान है या कठिन? खुशी से शरीर वही छोड़ सकता है जो खुशी में जिया हो, जो दुख में जिया है, दर्द में जिया है, पीड़ा में जिया है, वो क्या खुशी में शरीर छोड़ सकता है? जिसके मन में बदले की धड़कती अग्नि थी, आलस्य था, उदासी थी, पश्चाताप था, क्या वो खुशी में शरीर छोड़ सकता है? नहीं। खुशी में वही शरीर छोड़ता है जिसका जीवन सेलिब्रेशन था, उत्सव था, एक म्यूजिक था, एक संगीत था, एक गीत था। जिसने जीवन में गीत गाया वो अंत में भी गीत गाते हुए शरीर छोड़ेगा। चीन में बहुत प्रसिद्ध कहानी है थ्री लाफिंग सेंट्स की, आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। तीन लोग ऐसे थे जिस भी गांव में जाते थे लोगों को बहुत हंसाते थे। उनका नाम ही लोगों ने, उनका नाम तो लोग भूल ही गए, उनको कहने ही लगे तीन हंसते हुए संत। जहां भी जाते थे हमेशा हंसते रहते थे, हंसते रहते थे, हंसते रहते थे, और एक हंसना चालू करता था धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ हंसने लगता था। थ्री लाफिंग सेंट्स। एक बार उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसने अपनी मृत्यु का भी इतना सुंदर आयोजन किया होता है कि वो कहता है, मैं जब मरूंगा मेरे कपड़े नहीं निकालना, कपड़ों के साथ मुझे जलाना होगा। तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना प्यारा व्यक्ति था तो उसकी बात सभी मानते, परंतु बहुत उसको अर्थी सजती है, लेके जाया जाता है और शमशान घाट पर एकदम सभी उदास, और उसको जलाया जाता है। और जैसे ही आग लगती है अचानक फटाके फूटने लगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने शर्ट के अंदर फटाके छिपा के रखे थे। और जैसे ही फटाके फूटते हैं सब के सब हंसने लगते हैं। जिया भी हंसते हुए, हंसाते हुए, और मृत्यु के समय भी दूसरों को हंसाते हुए ही गया, विदा हुआ इस संसार से। तो हमारी मृत्यु ऐसी हो कि हम तो खुशी खुशी से विदा हो, पर जो दूसरे हैं वो भी ज्यादा दुख ना करें। दूसरी चीज खुशी, तीसरी संपूर्ण संतुष्टता, संतोष के साथ कि जीवन में जो कुछ करना था सब कर लिया, पावा परम विश्रामा। तुलसीदास ने लिखा है कि मैं ये ग्रंथ लिखकर परम विश्राम को प्राप्त हुआ हूं, जीवन में जो कुछ करना था सब कर लिया। एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। उसने लिखा है, मैंने अपना जीवन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के संशोधन में बिता दिया, परमाणु क्या है, अणु क्या है समझने में गवा दिया, इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स, और अब जब जीवन में मृत्यु आ चुकी है, आने वाली है, मुझे लगता है जैसे जीवन हाथ से निकल गया है, जैसे कुछ पाया ही नहीं, जैसे एक रिक्तता है, एज इफ अ वैक्यूम इज देयर इन माई लाइफ। हमारा जीवन ऐसा ना हो, हम वो सब कुछ कर ले जो हम करना चाहते थे राजधानी की स्पीड से, जो कुछ करना चाहते थे पुरुषार्थ, योग, तपस्या, जो जो बाबा ने मुरलियों में कहा है, जिस आत्मा ने सब कुछ किया है वो जाते समय भी परम तृप्ति के साथ जाएगा। हां, एक चीज जरूर होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ी चीज है, जो चक्रधारी बहन जी ने जगदीश भाई जी के विषय में लिखी है। भाई साहब जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु वो संसारिक आंसू नहीं थे, वो लगाव के आंसू नहीं थे, वो मोह के आंसू नहीं थे, वो इस संसार से विदा हो रहे इसके आंसू नहीं थे, वो जीवन के लगाव के आंसू नहीं थे, वो दुख के, पीड़ा के, दर्द के, पश्चाताप के आंसू नहीं थे, उनके बोल थे, मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, जिसने अपने जीवन को इस यज्ञ के लिए कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है जिसने अपने यौवन को यज्ञ की वेदिका पर स्वाहा कर दिया, वो कह रहा है जिसने किसी की परवाह नहीं की, केवल यज्ञ की परवाह की, परमात्मा प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो कह रहा है अपना व्यक्तिगत समय भी सेवा में लगा दिया, वो कह रहा है। तो जब हम संसार से विदा हो, परम तृप्ति हो कि हमने वो भगवान के लिए सब कुछ कर लिया जो हमें करना था, कर सकते थे। हां, यदि ये भाव प्रकट हो जाए, डिवाइन डिस्कंटेंट, अहोभाग्य, दैवी असंतोष, परंतु इस भाव के लिए कैसा रग रग में वो परमात्मा प्रेम होना चाहिए, कैसा जीवन बिताया हुआ होना चाहिए, कैसी साधना, कैसी तपस्या, कैसा वैराग होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए संसार का, यहां के भोग, यहां का विलासितापूर्ण जीवन, यहां का नाम मान शान सब कुछ निरर्थक गौन हो, तब ये भाव प्रकट होगा। तो तीसरा परम संतोष, चौथा उपरम अवस्था, जब इस संसार से हम विदा हो तो उपरम हो, किसी की याद नहीं, यहां की आसक्तियों से ऊपर, देह की स्मृति से परे, जैसे बाबा की अवस्था थी कि संकल्प थे तीन, बाबा हमारे रहे हैं, शुद्ध स्नेह था सभी के प्रति, और यह अनुभव की आत्मा शरीर से छूट रही है, निकल रही है, यह अंतिम कर्म बंधन, द लास्ट बॉन्डेज का अनुभव यह भी छूट रहा है। शरीर को भी धन्यवाद। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी थे, सारी उम्र भर शरीर को बहुत तकलीफ दी, उपवास किए, क्या क्या नहीं की, यातनाएं दी। अंतिम समय उन्होंने भी लिखा है कि हे मेरे शरीर, अपने ही शरीर से बात की, तुमने मेरी इतनी सेवा की, इस शरीर में बैठकर ही मैंने भगवान की इतनी प्रार्थना की, अर्चना की, वंदना की, इतनी सेवा की, और मैंने इस शरीर का ध्यान नहीं रखा। हे मेरे शरीर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि तुझ में बैठकर मैंने भगवान की ऐसी आराधना की। शरीर के प्रति भी कोई कंप्लेन का भाव नहीं। तो उपराम अवस्था शरीर से भी उपराम। चौथी, अगला, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्थिति। शरीर छूटते समय इन तीनों अवस्थाओं का अभ्यास, इन तीनों अवस्थाओं की अनुभूति के लिए लंबा समय का अभ्यास चाहिए तो ही होगा। अचानक से यकायक आउट ऑफ द ब्लू निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी की अवस्था नहीं आएगी। लंबा समय व्यक्ति जो ऐसा जिया है, जिस अहंकार और जिस अकड़ के साथ जिया है, वही अकड़ लास्ट में भी रहेगी, वही स्मृति लास्ट में भी रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति है, अंतिम शरीर छोड़ रहा है, कहता है मेरे सारे परिवार वाले आ जाओ, और सारे परिवार वाले सामने आ जाते हैं, कहता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, पत्नी कहती है ये क्या रहा तुम्हारा बड़ा बेटा, सम्मुख है, मेरे बाकी पांच बेटे कहाँ है, ये सब है इर्द गिर्द, सब तुम्हारे साथ है, हम सब आपके साथ है, मेरी बेटियां कहाँ है, ये है। तो वो कहता है अरे मूर्खो, अगर सब यहां हो तो दुकान में कौन है फिर, सारे जीवन भर दुकान ही बुद्धि में घूमता रहा, पैसे ही बुद्धि में घूमते रहे, अंत समय में भी दुकान ही घूमेगा। क्या हम सोच रहे हैं? तो फिर से जिस चिता को जलता हुआ छोड़ दिया था उसी के पास पहुंच जाओ और देखो उसको वापस कि ये है मेरा शरीर, और शरीर से जुड़ी हुई शरीर के भोग, शरीर की वासनाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर का भान, शरीर का अभिमान, शरीर का अहंकार, शरीर की इच्छाएं, शरीर के की स्मृतियां, शरीर के संस्कार, भाषा, स्थान, धर्म, रिश्ते, सब कुछ विनाश हो रहा है। अपनी आंखों से देखना है।
ध्यान कीजिए।
की याद हो बस, और किसी देहधारी की याद नहीं, और कोई बुद्धि में नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सारे रिश्ते नाते सब एक तरफ, केवल एक की याद। ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ना, और अंतिम सेवेंथ, एक ही संकल्प केवल जाते समय, अब घर जाना है, अब बाबा के पास जाना है। तो ऐसे ये सेवन यस हो, सबसे पहले होश, खुशी, संतुष्टता, उपराम अवस्था, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति, एक बाबा की याद, और अंतिम एक ही संकल्प केवल कि अब हमें घर वापस जाना है बस। फिर ऐसे सात नो, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला, नो अटैचमेंट, नष्टो मोहास्मृति में, नष्टो मोहास्थिति में शरीर छोड़ने का अभ्यास। इस देह से भी कोई आकर्षण नहीं, किसी भी व्यक्ति से मोह नहीं है, तो केवल प्रेम है। जैसे बाबा ने बताई थी तीन बातों में, दूसरी बात, कोई भी बच्चा विशेष स्मृति में नहीं है, परंतु सबके प्रति स्नेह है, कोई रग नहीं है, ये भी संकल्प नहीं है कि बिना छुट्टी के जा रहा हूं, सबके प्रति। तो किस अवस्था में शरीर छोड़ना? नो अटैचमेंट। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए नो अटैचमेंट का, लंबे समय का। अगर यदि अभी किसी में हम अटके हुए हैं, किसी व्यक्ति में, और उसके बिना बेचैन होते हैं, तो वही याद आएगा। किसी संबंध में अटके हुए हैं और वो संबंध में दिन रात हलचल है, वो हलचल याद आएगी। किसी विकार में फंसे हुए हैं, वो विकार याद आएगा। किसी अतीत के भोगे हुए भोग की स्मृति अब भी है, वो स्मृति याद आएगी। कोई संस्कार जिससे छूटने का प्रयत्न तो कर रहे हैं परंतु छूटे नहीं है, वो संस्कार इमर्ज होगा नहीं तो। इसलिए नो अटैचमेंट पहला। दूसरा, नो कंप्लेंट्स। किसी के प्रति हमारे मन में कोई कंप्लेंट नहीं, हम तृप्ति से जा रहे हैं, कोई बदले का भाव नहीं, संपूर्ण होश में तृप्ति से, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, सब अच्छे है, कोई जिम्मेवार नहीं, तुम, यहां ये ठीक नहीं, यहां वो ठीक नहीं, नो कंप्लेंट्स। तीसरा, नो रिपेंटेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी पश्चाताप नहीं। ये नहीं कि मैं अच्छा योग कर सकता था, नहीं किया, अवसर था, अच्छी तपस्या कर सकता था, अवसर था, कहां संसार की भागदौड़ में लगा रहा, जबकि समय था पुरुषार्थ का, जबकि समय था अपने अवगुणों को मिटाने का, अपनी कमजोरियों को मिटाने का, और मैं क्या करने में लगा रहा, जबकि समय था मौन का, जबकि समय था एकांत का, और मैं कहां संसार की भीड़ में संसार के लोगों की जैसे भागते रहा, समय था एकांत का, और मैं कहां खोया था आवाज में, शोरगुल में, वही कर रहा था जो संसार के लोग कर रहे थे, अंतर केवल वाइट ड्रेस था, बैच था, कर तो वही रहा था पर जो वो लोग कर रहे थे, नाम मात्र सेंटर जा रहा था, मुरली सुन रहा था, परंतु कर तो नहीं रहा था जो भगवान कह रहा था, जो पुरुषार्थ वो कह रहा था, क्या मैंने वो किया? रिपेंटेंस होगा, पश्चाताप होगा, संसार में रक्त की नदियां बहेगी, ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण संसार में खून के आंसू की नदियां बहेगी। जिन्होंने भगवान को जाना, भगवान को पहचाना, भगवान के लिए अपना जीवन अर्पण किया, परंतु वो पवित्रता भी धारण की, परंतु वो दिव्यता उनके जीवन में नहीं आई, वो पुरुषार्थ नहीं किया, वो देह की आसक्ति को मिटाने का पुरुषार्थ नहीं किया, वो स्वयं को उपराम बनाने का पुरुषार्थ नहीं, एक की याद में स्थित होने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो पश्चाताप के आंसू बहेंगे। क्या हम चाहेंगे कि हम पश्चाताप में मरे, तड़प तड़प के मरे, त्राही त्राही करते हुए मरे, बाबा बाबा करते हुए मरे? संसार में तो आवाज निकलेगी, बाबा बाबा बाबा, हमने नहीं जाना, क्या हम भी जिन्होंने जाना वो यही पश्चाताप करें? नहीं, नो रिपेंटेंस। चौथा नो सॉरो, कोई दुख नहीं, किसी भी बात का दुख नहीं। अगला नो फियर, कोई भय नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सेंटर का क्या होगा, डिपार्टमेंट का क्या होगा, जो मुझ पर निर्भर है उनका क्या होगा। यह हम ही जैसे संभाल रहे हैं उनको, यह हमारा भ्रम है। नो फियर। इसलिए अभी से वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा भय को मिटाने का, जो हम पर डिपेंडेंट है उनको इंडिपेंडेंट बनाते जाओ। यदि वो बच्चे हैं उन्हें भी इंडिपेंडेंस सिखानी है, आत्म स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। वो आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी, आध्यात्मिक भी, आध्यात्मिक रीति से भी हम पर कोई निर्भर ना रहे। सारी बैसाखियों को छोड़ देना है, खुद भी और दूसरों की भी बैसाखी हम ना बन जाए, नहीं तो हमको पकड़कर वो दुखी होगा हमारे जाने के बाद। नो फियर, नो पेन। अगला नो पेन, शरीर के में दर्द, कोई बीमारी है, असहाय बीमारी है, इतना दर्द उठ रहा है शरीर में, उस दर्द में हम शरीर ना छोड़े। योग की शक्ति इतनी जमा करनी है कि शरीर के दर्द को भी योग से कम कर देना है। दर्द होगा, बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, असहनीय वेदनाएं शरीर में होगी, मुश्किल है उस समय आत्मा समझना, बाप को याद करना, परंतु इसका भी अभ्यास हो, जब शारीरिक पीड़ा हो, बीमारी की अवस्था हो, उस समय भी हमारी योग की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है। दादियों को हम देखते हैं कितनी उपराम अवस्था, शरीर के दर्द से भी उपराम। नो पेन। और लास्ट नो हॉस्पिटल। ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु ऐसी हमारी मृत्यु हो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। नो लाइंस, नो ट्यूब्स, नो ड्रेन्स, नो वेंटिलेटर, हमारे हाथ में नहीं है, हमें हम कह रहे हैं, परंतु हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि हम सहज शरीर छोड़े, जैसे सांप अपनी खाल को छोड़ता है, जैसे मक्खन से बाल, इतनी सहजता से हमारी मृत्यु दर्दनाक ना हो, पीड़ादायी ना हो। इतनी सहजता से हम देखते हैं कई सारे मरीज ऐसे होते हैं, रात में सोते हैं घर में ही और सुबह उठते ही नहीं। एक 4-5 साल पहले मधुबन में एक माता आई थी मलेशिया से, और यहां पर अचानक शांति स्तंभ के पास ही उसे कुछ हो गया, हॉस्पिटल में लेके आए और उसने शरीर छोड़ दिया। बाद में हमने पता किया वो घर से निकलते समय ये संकल्प करके गई थी, मैं मधुबन में शरीर छोड़ूंगी, वापस नहीं आऊं। अपने बेटे को कह गई थी, मैं मधुबन जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी। परंतु मृत्यु का स्थान, समय, कारण हमारे हाथ में तो नहीं है। कोई सोचे कि हम यहीं रहते हैं, अब चाहे कि हमारी यहीं हो जाए मृत्यु, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। परंतु मन की स्थिति हमारे हाथ में है। स्थूल मधुबन हमारे हाथ में नहीं है, परंतु मधुबन केवल भौगोलिक परिभाषा नहीं है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है मधुबन की। हर वो स्थान जहां बाबा है वो मधुबन है, हर वो मन जहां पर मुरली गूंजती है वो मधुबन है, हर वो मन जहां पर पवित्रता है वो मधुबन है, हर वो मन जहां पर चार धाम है और व्यक्ति आत्मा उस धाम की यात्रा मन ही मन कर रही है वो मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर भगवान आते हैं मन के अंदर वो मधुबन है। ये सातों चीजें नहीं होनी चाहिए. नो सॉरो, नो पेन, नो कंप्लेंट, नो हॉस्पिटल. लास्ट ऑप्शनल, नो पहला बताया था अटैचमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है. नो फियर, कोई भय नहीं, खुशी खुशी से जा रहे, निर्भय होकर जा रहे. एक व्यक्ति था, बहुत सुंदर मूर्तिकार था, यूनान की कहानी है. इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि जब वो मूर्ति बना दिया किसी की, अगर उस व्यक्ति को भी सामने रख दिया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता, सही कौन, असली कौन सा है, नकली कौन सा, ऐसी मूर्ति बनाता था. जब मृत्यु समीप आई, उसको लगा क्यों ना मैं मृत्यु को धोखा दे दूं, तो उसने अपने ही जैसी ऐसी 11 मूर्तियां बनाई कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको ले जाऊं. तो उसकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई तो 11 मूर्तियां रखी थी और एक जगह वो जाके खड़ा हो गया. तो वो मौत का फरिश्ता आता है, कंफ्यूज हो जाता है किसको ले जाऊं, क्योंकि 12 के 12 लोग सेम दिख रहे हैं. तो दिखाया है, काल्पनिक कहानी है. भगवान के पास जाता है, कहता है क्या करूं, ये तो बहुत चालाक निकला, समझ में नहीं आ रहा है सही कौन है नकली कौन है. भगवान उसके कान में एक सूत्र बोलते हैं. तो वो फरिश्ता नीचे आता है और फिर वहां आके कहता है कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, परंतु एक भूल हो गई है. तो वो व्यक्ति कहता है कौन सी भूल, बोलता है यही भूल, स्वयं को तुम भूले नहीं, यही भूल, अभी भी मैं है, मैं और भूल, मेरी मूर्ति में और भूल, यही भूल, चलो अब. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. सात चीजें होनी चाहिए, समय कम है, खाली नंबर गिनाएंगे हम आपको. सबसे पहली चीज, ये सारा होने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है, आप सबसे पहला अचानक एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ. एक दिन में नहीं होगा, बहुत काल का पुरुषार्थ और अचानक होगा. अब आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, अचानक क्या क्या हो सकता है उसकी एक लिस्ट बनानी है कल. अचानक क्या क्या हो सकता है, मेरी मृत्यु, स्वजनों की मृत्यु, मेरी बीमारी, स्वजनों की बीमारी, और इन अवस्थाओं में मैं स्थिर कैसे कितना रह पाऊंगा. अचानक के पेपर में 21 चीजें लिखनी है जो अचानक हो सकती है मेरे जीवन में, दूसरों के जीवन में नहीं, मेरे जीवन में अचानक कुछ भी क्या क्या हो सकता है उसकी एक लिस्ट बनाओ. और फिर सोचो कि अगर ये हो जाए तो क्या मैं स्थिर रहूंगी, रहूंगा. फर्स्ट, अचानक, एवर रेडी और क्या, बहुत काल का अभ्यास. ये पहली बात है जो करनी है पुरुषार्थ के रूप में, इन 14 चीजों को, चीजें होने के लिए. दूसरा है हर घड़ी अंतिम घड़ी है. Live this life as if this day, as if this is the last day. अंग्रेजी का एक कवि है जॉन डोन, उसने कविता लिखी है. उसने लिखा है कि इंग्लैंड में बहुत पहले एक प्रथा थी कि जब भी कोई मरता था तो चर्च की घंटियां बजती थी. तो उसने अपनी कविता में लिखा है कि जब भी सुनो कोई मरा है, ये ना पूछो कौन मरा है, सोचो मैं ही मरा हूं. इट टॉल्स फॉर धी, डोंट आस्क फॉर हुम इट टॉल्स, इट टॉल्स फॉर धी. ये नहीं पूछो कौन जा रहा है, अगर किसी की अर्थी जा रही है तो ये नहीं पूछो कौन जा रहा है, किसकी अर्थी है, सोचो ये मेरी ही अर्थी जा रही है. इट टॉल्स फॉर धी, ये अभ्यास है. तो दूसरी चीज क्या बताई, हर घड़ी अंतिम घड़ी है. सोचो सुबह हमें बाबा आके स्वप्न में बताते कि बच्चे 6 बजे शाम को तुम शरीर छोड़ने वाले हो, सोचो हम कैसे वो दिन बिताएंगे. क्योंकि रात में हमने सोचा है उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको कल देखूंगा, आने दो डिपार्टमेंट में, ये सोच के रखा था. और सुबह सुबह स्वप्न में ये आ गया, तो कैसे हम बिताएंगे, हमारे पास कुछ ही समय है, बस शाम को जाने वाले है, क्या करेंगे. अच्छा होमवर्क है ये, सोचो थोड़ा इसके विषय में कि हम क्या क्या करेंगे यदि हम रात को ही विदा हो रहे हैं संसार से. क्या दुश्मनी रखेंगे, क्या किसी से झगड़ा करेंगे, क्या बदले का भाव रखेंगे, क्या किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और उसके प्रति हम बुरा सोचेंगे, जो भी जिसने किया छोड़ो ना, तो जाना ही तो है, यही सोचेंगे ना. तो दूसरा है हर घड़ी अंतिम घड़ी. तीसरा मरजीवा जन्म, मरजीवा बनने का पुरुषार्थ करना है. डाइंग अलाइव, जीते जी मरना, मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। अपना संस्कार पहले ही कर देना, सन्यासी लोग अपना संस्कार पहले ही कर देते ताकि वो रिश्तेदार ना आ जाए संस्कार करने। जीते जी मरना अर्थात देह की वासनाओं से मर जाना, संसार के आकर्षण से मर जाना। ये जो डिजिटल वर्ल्ड का विस्तार है और जिसमें सारे संसार डूब गया है, उससे मर जाना। डिजिटल वर्ल्ड केवल ब्राह्मणों के लिए सेवार्थ है बस, समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं। सोशल मीडिया केवल सेवा के लिए, ना कि उसमें चिपके रहने के लिए। और संगम का अमूल्य समय हम बिता दिए व्यर्थ गंवाने के लिए, इसके लिए नहीं है वो। तो अंतिम घड़ी दूसरा और तीसरा बताया, मर्जीवा चन, जीते जी मरने का अभ्यास। अगला वैराग, संसार से वैराग बढ़ाना है। वैराग की चर्चा बहुत कम है, वैराग का चिंतन भी बहुत कम है। यदि हम यज्ञ के गीत देखें, ऐसे हम देखते हैं कितने कम गीत है जो वैराग पर है। वैराग के गीत चाहिए रमेश भाई जी, वैराग के गीत बनाया है। तो वैराग का चिंतन, ईश्वरे अनुराग विषये वैराग विराग, जब तक ये अभ्यास नहीं तो मृत्यु में पीड़ा होगी, दर्दनाक मृत्यु होगी। लगाव राग खींचेंगे और राग जो है बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। राग की रगे खींचती है आत्मा को, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, बिछोह विरह की अग्नि कि मेरे अपने ये सब छूट जाएंगे, ये सोच के ही हृदय विदीर्ण हो जाता है व्यक्ति का। या फिर मेरा ये इतना प्यारा व्यक्ति जा रहा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरे साथी, मेरे संबंधी, मेरी मां, मेरे पिता, बहुत पीड़ा होती है। दूसरों को तो बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं, आत्मा अमर है, अविनाशी है, पर स्वजन जब जाते हैं तो आंखें आंसुओं से भर जाती है। तो ऐसा क्यों? शायद योग की धूप से आंसुओं की टंकी को अभी भी सुखाया नहीं है अव्यक्त महावाक्य बाबा के। वैराग। अगला गहन तपस्या। किसकी? आत्माभिमानी स्थिति की। आज सुबह की मुरली, बाप आए हैं तुम्हें आत्माभिमानी रहने का रहस्य बताने। शायद हमने सुनते हुए भी नहीं सुना। कितनी प्रैक्टिस चाहिए सोल कॉन्शियसनेस की, मैं आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, सब आत्माएं हैं। दिन रात यदि देह का चिंतन, दिन रात यदि देह की बीमारी का चिंतन, दिन रात यदि केवल देह 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 ही बुद्धि में गुंज रहा है, इस देह को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, परंतु हेल्थ के लिए ओवर कॉन्शियस हो जाना भी देहभान है। संभाल रखने को कहा है बाबा ने, उसमें डूबने के लिए नहीं कहा है, बैलेंस रखने को कहा है। दिन रात क्या खाना है ये चिंतन करने के लिए नहीं कहा है। वैराग, तपस्या, ये चीजें चाहिए। कितने हुए? पांच। छठवा क्या चाहिए जाते समय, जाने के लिए? क्या नष्ट मोह तो बोल दिया, नो अटैचमेंट में आ गया वो। हाँ, सारे हिसाब किताब चुक दू, कोई भी नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, जो है वही बहुत ज्यादा है। किसी को अभी नया भाई मत बना देना, नई बहन मत बना देना। विशेष है तो सभी, पर तुम थोड़े ज्यादा विशेष हो। विशेष टोली तुम्हारे लिए और विशेष राखी तुम्हारे लिए। भाई को भाई रहने दो और बहन को बहन ही। विशेष बहन और विशेष भाई नहीं बना देना, या किसी को मम्मी नहीं बना देना, या काका मामा नहीं बना देना इस परिवार के अंदर, या दोस्त ही नहीं बना देना। विशेष दोस्त, साथ साथ घूमना, साथ साथ खेलना, साथ साथ सब कुछ करना, ये भी लगाव है। तो हिसाब किताब चुप तो करने हैं, ना कि नए बनाने। सिक्स्थ, और लास्ट फिर क्लास को पूरा करेंगे। लास्ट कौन सी बात आप बताएं? क्या बाबा से अटूट प्यार बोलते जाओ, अशरीरी अवस्था वो हो गया आत्मा अभिमानी में, और न्यारे प्यारे, और बाबा का हाथ साथ, और मुख में प्रभु का नाम, और उधर से आवाज आ रही है, और ड्रिल करनी है कौन सी, आने और जाने की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं बाबा स्पिरिचुअल ड्रिल। नीच शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, ये ड्रिल सबसे ज्यादा हो। जैसे वो ड्रिल अगर ना करे तो शरीर के जो मसल्स है ढीले हो जाते हैं, फ्लैबी, वैसे स्पिरिचुअल ड्रिल अगर ना करे तो आत्मा भी ढीली हो जाएगी। अभ्यास कौन सा चाहिए? शरीर में आने का, शरीर से बाहर जाने का। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, एक सेकंड में अभ्यास करेंगे। शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, एक शरीर में नीचे आना, एक शरीर में ऊपर जाना, सूक्ष्म वतन में बाबा से हाथ मिलाना, दृष्टि लेना, परम धाम में बाबा को स्पर्श करना, फिर सूक्ष्म वतन, फिर शरीर। मैं आत्मा, भ्रुकुटी में विराजमान दिव्य ज्योति, ज्योतिकण, उपराम, नष्ट मोह, स्मृति स्वरूप, सारे हिसाब किताब चुकतु, परमानंद, बाबा की याद, आत्माभिमानी स्थिति, देह के भव्य भाल पर विराजमान, मैं ज्योति पुंज हूं, प्रकाश का कण हूं। एक सेकंड में देह को यही छोड़ पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि मुझ पर, बाबा मुझे देख रहे, सूक्ष्म देह को यही छोड़ मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम। डेथ साइलेंस, स्वीट साइलेंस, बाबा को स्पर्श किया, महाज्योति से शक्ति आली, वापस नीचे सूक्ष्म वतन में, फिर बाबा से दृष्टि, वापस स्तन में, वापस ऊपर सूक्ष्म वतन में, बाबा से दृष्टि, और ऊपर परम धाम में बाबा को टच किया, शक्ति आली, सूक्ष्म वतन में बाबा की दृष्टि, वापस स्थूल तन में। ओम शांति। एक सूचना, मंगलवार दिनांक 29 को रात्रि क्लास में 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख मई, इन तीन दिनों की मुरलियों पर आधारित खेल खेल में प्रश्न उत्तर होंगे। सभी भाई बहनें मुरली का अध्ययन कर कर आए। ओम शांति।